हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जब ध्रुव ने देखा कि उसकी वजह से कृषा और युग के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो ध्रुव तारा से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। वैसे भी कृषा ध्रुव को लेकर बहुत इमोशनल थी। अगर इस मामले में ध्रुव कृषा की मदद लेता तो वो उसके लिए युग तक से लड़ जाती, बस यही ध्रुव नहीं चाहता था। ध्रुव कृषा से बात करने के लिए अंदर कमरे में पहुंचा तो कृषा मायूस चेहरे के साथ लेटी हुई थी। उसकी इस उदासी का कारण ध्रुव अच्छे से समझ सकता था। ध्रुव ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट दी और कृषा के पास आकर कहा, आपको इस तरह सैड होने की जरूरत नहीं है, मैंने डैड से बात कर ली है और मुझे उससे शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है। डैड ने मुझे पहले ही कहा था कि हमारा काम होते ही मैं उसे डिवोर्स दे सकता हूँ, या फिर उस गलती की सज़ा जो उसने आपके साथ किया था। पर इसमें तुम्हें अपनी ज़िंदगी स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, बिना शादी के भी तो सब कुछ हो सकता है, कृषा ने कहा। नहीं हो सकता, तभी डैड ने शादी करने का कहा है। खैर छोड़िए, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मलिक अंकल एंजल को लेकर आते ही होंगे, उसके सामने आप नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, उसे यही पता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव के चेहरे के भाव भले ही नॉर्मल हों, लेकिन कृषा उसे ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के पीछे छुपी उदासी को समझ सकती थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा वो तुम्हारे लिए सही है। डोंट वरी, तुम्हारी लाइफ में वो लड़की ज़रूर आएगी जो सच में तुमसे प्यार करेगी। बस एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर तुम उससे कभी नहीं मिलोगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी, कृषा उसे तसल्ली दे रही थी। तभी ध्रुव हंसने लगा। मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए सिवाय मेरी फैमिली के, अब मुझे इन प्यार जैसी फीलिंग्स पर यकीन नहीं है, टेक केयर, ध्रुव ने जवाब दिया और जाने से पहले कृषा के फोरहेड पर किस किया। उसके जाने के बाद कृषा कमरे में अकेली रह गई थी और उसके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। अपनी फैमिली के अलावा ध्रुव ने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया था और ना ही किसी बाहर वाले को अपने दिल में जगह दी थी। तारा वो पहली लड़की थी जिससे उसे प्यार हुआ था और उसने ही उसे धोखा दे दिया था। युग ने तारा को पहले ही अवेयर किया था कि ध्रुव ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई चोट नहीं खाई है, बेहतर यही था कि वो उसे धोखा ना दे वरना अंजाम बुरा होगा, और वही हुआ। तारा के इस धोखे में ध्रुव को अंदर से तोड़कर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ वीर तारा की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करवा रहा था। तारा को डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ से निकलने के बाद उसे टॉर्चर रूम में ले जाया जाएगा, जिसका रास्ता उसने खुद चुना था। वीर तारा को व्हीलचेयर पर बैठाकर वहां से ले जा रहा था कि तभी उनके सामने ध्रुव आ गया था। तारा और ध्रुव की नज़रें आपस में मिली तो तारा ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही तारा थी जिससे वो इतना प्यार करने लगा था और उसके आसपास ना होने पर वो बेचैन हो जाता था। अब तो उसे तारा की शक्ल तक से नफरत हो रही थी। ध्रुव ने उसे देखकर गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया था। तारा ने वीर की तरफ सिर उठाकर देखा और मायूसी से कहा, क्या अब ये मुझसे इतना गुस्सा है कि बात भी नहीं कर रहा है? तुम्हारा सेंटेंस थोड़ा गलत है, इसे गुस्सा नहीं नफरत कहते हैं। बाकी अब इस इग्नोरेंस और आंखों में नफरत की आदत डाल लो, तुम्हें ये उम्र भर झेलना होगा, वीर ने जवाब दिया। उसे तारा और ध्रुव की शादी के बारे में पता था, लेकिन तारा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। तारा उलझन भरी निगाहों से वीर की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा देखकर ही वीर समझ गया था कि तारा इस बारे में कुछ नहीं जानती है। इससे पहले कि तारा कोई सवाल पूछता, वीर ने सख्ती से कहा, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चलो तुम्हारी असली जगह चलते हैं जो तुमने खुद सिलेक्ट की है। तारा को लगा था कि उसकी जो हालत थी उसके बाद उस पर थोड़ा भी रहम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वीर तारा को युग के विला पर लेकर पहुंचा और उसे वापस उसकी जगह पर ले जाकर बांध दिया था। तारा के जख्म पर दर्द हो रहा था पर फिर भी उसने उफ तक नहीं की। वहीं कृषा के होश में आने के बाद सबको पता चल चुकी थी। जब से युग और कृषा के बीच में बहस हुई थी, युग कृषा के सामने नहीं आया था, लेकिन हाँ, उसने याशी को हॉस्पिटल जरूर पहुंचा दिया था। याशी सारा और शब्द के साथ कृषा के कमरे में थी और वहीं उनके पास हरलीन और अलीशा भी खड़ी हुई थीं। याशी को अपने सामने सही सलामत देखकर कृषा को काफी राहत महसूस हुई, वरना दक्ष मल्होत्रा ने जिस तरह याशी का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल करके बुलाया था, उसके बाद वो उसके लिए काफी डर गई थी। याशी ने मासूमियत से कृषा की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मॉम आप जल्दी से घर आ जाओ, मुझे आपके यहाँ पर देखकर अजीब सा लग रहा है। बस कुछ दिनों की बात है, कृषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। याशी के परेशान चेहरे को देखकर कृषा ने उसके मूड को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा क्या तुम अपनी फैमिली से मिली याशी? याशी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उन सब की तरफ देखा। हालांकि उस दिन हॉस्पिटल में मिलने के बाद से याशी उनसे वापस नहीं मिली थी और ना ही वो उन्हें ठीक से जानती थी। अलीशा याशी के पास आई और उसका हाथ सहलाकर कहा, मासी आप ठीक हो जाओ, फिर हमारे साथ याशी भी अपने घर पर चलेगी। तुम जानती हो याशी, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर आप लोग मुझसे पहले मिलने क्यों नहीं आए? याशी ने उनकी तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा। उसके इस सवाल का जवाब तो उनमें से किसी के पास नहीं था। शब्द ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अब इस बारे में तो तुम्हें अपने डैड से पूछना चाहिए, उनका बस चलता तो अभी भी हमें तुम्हारे बारे में। इससे पहले कि शब्द अपनी बात पूरी करता, सारा ने उसे काटते हुए कहा, पहले हम किसी वजह से नहीं मिल पाए थे, लेकिन अब हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह हमेशा साथ में रहेंगे। मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है, ऐसा करो तुम अलीशा दीदी के साथ चली जाओ। हाँ बिल्कुल याशी, मैं तुम्हें हमारे सभी फैमिली मेंबर की फोटो दिखाऊंगी और उनके साथ तुम्हारे रिलेशन को बताऊंगी, ताकि जब भी तुम उनसे मिलो तो कन्फ्यूज ना रहो। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है? अलीशा ने मुस्कुराकर कहा। अलीशा याशी को वहां से ले जाना चाहती थी। याशी ने अलीशा के साथ जाने से पहले कृषा की तरफ देखा। कृषा ने पलके छपकाकर हामी भरी। याशी अलीशा के साथ चली गई थी, उनके साथ शब्द भी बाहर था। अब कमरे में बस हरलीन, कृषा और सारा ही रह गए थे। उनके बाहर निकलते ही हरलीन ने कृषा की तरफ घूर कर देखा और कहा, युग का मुझे समझ आता है, लेकिन तुम तो बता सकती थी ना, सीरियसली अपने बच्चों के बारे में कौन छुपाता है? याशी पूरे 8 साल की हो गई और हमें अब पता चल रहा है कि तुम्हारे एक बेटी भी है। पहले मुझे भी युग का फैसला गलत लगता था, लेकिन उस दक्ष मल्होत्रा ने जिस तरह याशी का नाम लेकर फायदा उठाने की कोशिश की थी, अब मुझे लगता है कि युग का फैसला बिल्कुल सही था बुआ, कृषा ने जवाब दिया। ठीक है मान लिया युग का फैसला सही था, आगे सारा बोली, पर तुमने जो बेवकूफी की उसका क्या? सीरियसली तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि जिस बच्ची को युग ने अपनी फैमिली तक से छुपा कर रखा है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर वो थोड़ा भी केयरलेस हो सकता है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर उसे किडनैप कर ले? तुम्हें एटलीस्ट किसी ना किसी को बता देना चाहिए था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो ध्रुव और युग टाइम पर पहुंच गए थे, वरना जिस तरह से तुम्हें शूट किया गया था, तुम जिंदा नहीं बचती।
कृषा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने भी वो लम्हा आ गया था जब तारा ने उससे कोई सवाल तक नहीं पूछा था और ना ही ये देखा था कि दक्ष के साथ लड़ने वाला कौन था। उसने बिना सोचे समझे कृषा को शूट कर दिया था। आखिर उसने दक्ष मल्होत्रा की वजह से मुझे क्यों मारा? कृषा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तुम अब खुद से बातें करना बंद करोगी? मुझे बताओ तुम्हें किसने शूट किया था? युग ने तो अब तक उसके बारे में पता लगा भी लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं बता रहा है। मुझे युग और ध्रुव पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें मारने की कोशिश करने वालों को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी मैं उनका नाम जानना चाहती हूँ, सारा ने हल्के गुस्से में कहा। कृषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो तारा का नाम कैसे ले। तारा जिस हिसाब से उनकी फैमिली का हिस्सा बनी थी, कोई उस पर यकीन नहीं करता था सिवाय कृषा के। ऊपर से अब तो युग ने ध्रुव और तारा की शादी के बारे में भी सोच लिया था। ऐसे में ये सब सामने आना कि तारा ने कृषा को गोली मारी थी, सही नहीं था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, मैं बेहोश हो गई थी। मुझे बस इतना पता है कि मुझे दक्ष मल्होत्रा ने याशी का नाम लेकर वहां बुलाया था, कृषा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो झूठ बोल रही है। ऊपर से सारा इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जो कृषा की इस हड़बड़ाहट का मतलब ना समझ पाए। सारा ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया था, क्योंकि अंदर आने से पहले अर्जुन ने साफ हिदायत दी थी, कोई कृषा से किसी तरह की स्ट्रेसफुल बात नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, हम पता लगा लेंगे। अर्जुन भैया ने हमें ज्यादा देर तक अंदर रहने से मना किया है, तुम रेस्ट करो, हम बाद में आएंगे, सारा बोली और फिर हरलीन के साथ वहां से बाहर चली आई थी। युग की परमिशन लेकर अलीशा याशी को राणा मेंशन ले आई थी, उसके साथ शब्द और हरलीन भी थे। वहां जाकर वो हैरान हो गए जब उन्होंने देखा अलीजा ने एक अच्छी खासी इवेंट मैनेजमेंट टीम को घर पर बुला रखा था। वो उन्हें हर एक इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही थी। अलीशा जल्दी से उसके पास गई और हैरानी से पूछा, तुम कृषा मासी के वेलकम की तैयारी करने का सोच रही हो क्या? सीरियसली? अलीजा ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हें क्या इतनी बड़ी टीम सिर्फ एक वेलकम पार्टी होस्ट करने वाली लग रही है? दिख नहीं रहा यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं। तुमने ये बोलकर मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। लगता है दूसरी टीम को बुलाना पड़ेगा ताकि सब कुछ ग्रैंड लगे। शादी की तैयारी? शब्द ने उसे घूरते हुए पूछा। और तुम किसकी शादी की तैयारी कर रही हो? कहीं तुमने कोई लड़का तो पसंद नहीं कर लिया है? कम से कम बता तो देती। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे जो खुद की शादी खुद ही होस्ट करनी पड़े। ये सब युग चाचू का ऑर्डर है, वो ध्रुव की शादी की तैयारी करवा रहे हैं, अलीजा ने आइज रोल करके जवाब दिया। हाँ तो पुरानी टीम और डेकोरेशन में क्या प्रॉब्लम थी और तुमने उसे हटाया क्यों? हाँ, कृषा के अचानक हॉस्पिटलाइज होने की वजह से ध्रुव की शादी रुक गई थी, पर इवेंट मैनेजमेंट टीम बदलने की कोई जरूरत नहीं थी अलीजा, हरलीन ने उसे समझाया। वैसे भी ध्रुव की शादी का सुनकर उनमें से किसी को हैरानी नहीं हुई। कृषा को गोली लगने की वजह से ध्रुव और मेहर की शादी बीच में रुक गई थी। अलीजा के चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी, उसने कंधे उचकाकर कहा, अब चाचू ने दुल्हन बदल दी तो सोचा मैं टीम बदल देती हूँ। पिछली बार सब कुछ मेहर ने हायर किया था, मुझे उनका काम काफी ब्राइट लगा था, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया। दुल्हन बदल दी है से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ध्रुव की शादी किसी और से हो रही है? शब ने तुरंत पूछा। हाँ बिल्कुल, आई होप कि अब आप चाचू से बात करके उन्हें समझा सकें तो वो अपनी जिद छोड़कर ध्रुव की शादी उस मर। अलीजा बातों ही बातों में उन्हें तारा की सच्चाई बताने जा रही थी, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही युग वहां पहुंच गया था। युग ने अंदर की तरफ आते हुए तेज आवाज में कहा, हाँ अब ध्रुव की शादी तारा के साथ में होगी, और आई होप कि आप सब लोग सवाल पूछकर मुझे इरिटेट नहीं करोगे। हर कोई युग की तरफ देखने लगा था। शब्द ने आईज रोल करके कहा, इसने बस हमें शौक देने का शौक पाल रखा है। आप लोग बड़े हो, लेकिन आप में इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों के सामने बहस नहीं करते हैं, युग ने उन्हें घूरते हुए कहा, और फिर याशी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया था। अपनी बहस में वो सच में याशी के बारे में भूल गए थे। युग याशी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो उसके आगे के बालों को सही कर रहा था। युग और याशी को कोई भी साथ में देखता तो उन्हें उतनी ही हैरानी होती थी जितनी अब राणा फैमिली को हो रही थी। इतने प्यार से कभी युग ने कृषा को भी हैंडल नहीं किया था जितना वो याशी के साथ पेश आता था। वो उसके साथ एक अलग ही इंसान बन जाता था। डैड, ये सब लोग भाई की शादी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इस बार मुझे शादी में आने की परमिशन मिलेगी? याशी ने धीमी शांत आवाज में कहा। बिल्कुल मिलेगी, इनफैक्ट अब तो तुम हर एक फंक्शन में शामिल होगी और हमारी फैमिली के साथ रहोगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें मुझसे यश? युग ने प्यार से पूछा तो याशी ने नामे सिर हिलाया और उसके सीने से लग गई थी। ये बच्ची सच में दुनिया की सबसे लकी लड़की है जिसने सबको अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देने वाले डेविल को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया, शब्द ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। शब्द हमेशा युग का यही रूप देखना चाहता था, जो कृषा तक पॉसिबल नहीं कर पाई थी वो याशी ने कर दिया था। रात के लगभग 1 बज रहे थे जब ध्रुव युग के प्राइवेट विला पर पहुंचा था। ध्रुव नहीं जानता था कि तारा को वापस यहां लाया गया है। वो गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ने लगा तो उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड बस अपना सर झुकाकर खड़े हुए थे। वो आवाज तारा के रोने की थी, जिसे सुनते ही ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त गुस्से में उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी। तारा के रोने की आवाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफी दर्द में है। ध्रुव, जो पिछले 3-4 दिनों से रात को सोया तक नहीं था, वो कृषा के ठीक होने के बाद एक अच्छी नींद लेने के मूड में था और जल्दी से अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन तारा के रोने की आवाज सुनकर उसके कदम वहीं पर रुक गए थे।